करते हो? कहते हैं मेरे को जितना आपका विश्वास है उतना ना मेरे कुटुंब का है ना इसी कुटुंब का है, मैं तो आप पर विश्वास आपको रखना पड़ेगा और मेरे को जाना जरूरी है और कई महीने लगेंगे, आप रख लो। बहुत आग्रह किया। उसने कहा कि देखो साहब, आप खड़े और आपकी स्त्री खड़ी, मैं चाहे सो इसके साथ बर्ताव करूंगा, ये इसको तुम्हारे को मंजूर हो तो रख ले। तो स्त्री देखने लगी पति की तरफ। कारण उसका कि मेरे को क्या बता क्या करना आप कहो, क्योंकि मैं कहता हूं यहां रहो और तुम जैसे उचित हो बर्ताव करना रखना तुम्हारे पास। तो बहुत अच्छी बात। राजकुमार चला गया, वो अपनी स्त्री के पास पहुंचा और जाकर कहा कि ये अपनी कन्या की तरह है, इसके कोई चिंता फिक्र न हो जाए, दिन भर तो शाम को मैं आ जाऊंगा, काम करता हूं दिन में और फिर अपने ठीक करेंगे। शाम को आ गए और इस चित्त को कोई भी खेप ना हो, किसी तरह का दुख ना हो, कमी किसी चीज की रहे नहीं, चित्त इसका प्रसन्न रहे ऐसे रखो। उसने रखा। रात्रि को सोने लगे तो अब ये क्या सोऊंगा, मैं इनको मैं साथ लेकर सोऊंगा, बाएं तरफ तो अपनी स्त्री को, दाएं तरफ उस राजकुंवर की स्त्री को, दोनों को सुताकर भीतर बीच में सोता, बीच में सोता, कहीं उसके हाथ लग जाए अपना हाथ उसके लग जाए, उसका हाथ अपने लग जाए नींद में भी, तो मालूम होता है कि माँ की गोदी में सोया हूं। इधर हाथ लगे तो अपनी स्त्री भी है। ऐसे वो साथ में सोने लगा तो लोगों में बड़ी निंदा हो गई, कहा कि देखो राजकुंवर कितना बेअकल है, अपनी स्त्री को सौंप गया और ये कहीं साथ में रहकर बच सकता है, ये ऐसा ऐसा निंदा बहुत करने लग गए लोग। 6 महीनों में बड़ी निंदा हुई, अपवाद हुआ। अब वो राजकुंवर आया तो वो क्या करता है कि उसने लकड़ियां इकट्ठी करी, अद्रोहक ने लकड़ी इकट्ठी करके चिता बनाई, चिता बनाई। इतने में वो राजकुंवर आ गया, क्या कर रहे हो? कि भैया तुम्हारा कहना करने से हमारी बड़ी निंदा हो गई, अब तो हम चिता बन करके जल जाएंगे। कहते लोग निंदा करे, मैंने तो कुछ नहीं कहा, कुछ नहीं उसका उत्तर है, बस जलने की तैयारी। चिता बना करके बीच में बैठ गया, आग लगा दी। आग जलने लगी, देवता प्रकट हो गए, आग बुझाई और कहा कि तुम सदा सर्वदा शुद्ध पवित्र निर्मल हो। लोगों ने जिन लोगों ने निंदा की वो देखा आज ये अद्रोक मर रहा है बड़ा अच्छा है, वे आए तो उनके मुख पर कोढ़ निकली आई जो झूठी निंदा करी। अब वो फंस गया मेरा, ऐसे उसको तो कपड़ा भी काला नहीं हुआ मेरा साफ, और देवताओं ने सिद्ध किया। उस दिन से ये सज्जन पदवी मिली, सज्जनाद्रोह इसका नाम है, ये आ गया इसके साथ। जाकर देखे तो वही ब्राह्मण खड़ा हुआ अभी बीच में। अद्रोह ने कहा महाराज मेरे को तो अभी भगत नहीं है, काम धंधा है मेरे, जल्दी हो तो एक विष्णु शर्मा विष्णुदास एक रहते हैं अगर, वो ठाकुर जी का पूजा कर भक्ति करता है रात दिन, वहां चले जाओ, वो आपको धर्म का तत्व तो बताएगा और ठहरो तो मैं भी बता दूंगा। इतने वो ब्राह्मण वहां से ही निकल गया और कहते चलो मैं बताऊं विष्णुदास का घर। अच्छा भाई बताओ। अब वो कहते ये डाक कहां तक पहुंचेगी भाई, एक जगह बता रहे हैं वहां पहुंचे। इसमें क्या है कि ये ठाकुर जी का पूजन भजन कीर्तन जप हरदम करता है, ठाकुर के चरित्र पढ़ता है, लोगों को सुनाता है, कीर्तन करता है, भगवान के भजन कीर्तन में मस्त रहता है हरदम और ठाकुर जी की सेवा करता है। ये आ गया महाराज उसका घर, ये मंदिर। उसके यहां पहुंचे तो कहा महाराज वो धर्म का तत्व जानने के लिए आप आए हैं, कितना सब बता दी। तो भैया आया तो हूं तुम्हारे पास, तुम बताओ। महाराज मैं क्या जानू, धर्म का तत्व भगवान जानते हैं, चलो आपको भगवान के दर्शन कराना। ऐसे कर कपाट खोला तो सिंहासन के ऊपर वही ब्राह्मण खड़ा है जो मुंह के घर पर खड़ा था, सिंहासन के ऊपर ठाकुर जी के जो वही खड़ा। अब इस ठाकुर जी से पूछ, तब ठाकुर जी बोले कि नरोत्तम मैं वही हूं, तुम पहचान नहीं सके, अंतकरण तुम्हारा शुद्ध नहीं, वो मूक और पतिव्रता और तुलाधर और अद्रोग ये सब सज्जन है, संत हैं। अब देखो वो मूक के माँ बाप मर रहे हैं, देखो मेरे दृष्टि से देखो वो मरे हैं, वो विमान आए हैं, उन विमानों में जा रहे हैं, उनके घर में रहे चींटी चीड़ी, उनके मेरे ये तीर्थचा छोटे बड़े जीव जंतु सब चतुर्भुजी मूर्ति लेकर धारण करके जा रहे हो, इतना वो माता पिता का भगत है, इतनी उसकी महिमा देख लो। ये उस ब्राह्मण देवता ने बताया जो भगवान थे स्वयं। वेदव्यास जी महाराज ने कहा कि देखो तुम कहते हो कल्याण कैसे हो, ये पांच महायज्ञ है, माता पिता की सेवा करना, पतिव्रत का पालन करना और परस्त्री माते व इसका पालन करना, धर्म ठीक तरह रहना और भगवान का भजन करना, और वेश तोले तो पूरा तोले, सत्ता बोले ठीक तरह, दुनिया का हित करे, इससे इनके घरों में भगवान रहते हैं साक्षात। परमात्मा कहाँ रहते हैं तो ये जगह है परमात्मा के रहने की, ये अपना धर्म का पालन कर दो भगवान मिल जाए। ऐसी हाँ नरोत्तम ये बात है, तो नरोत्तम गया घर पर, उलाना दिया कि तुम चाहता है कि भगवान मिले, घर में माँ बाप तो बैठे हैं और तीर्थों में भटकता फिरता है, क्या मिलेगा बोला, जाओ माँ बाप की सेवा करो, बड़े बूढ़ों की सेवा करो, आज्ञा पालन करो। अब दान पुण्य करने लगे, कर्जा उतरा ही नहीं, माँ ने किस किस कठिना से तुम्हारा पालन किया है, उसकी तो उस चित्त को तो महाराज प्रसन्न किया ही नहीं, और दान पुण्य करने लगे, पढ़ करके तैयार हो गए, बड़े धनी बन गए, और माँ बाप बेचारे कराहते रहे, बीमार पड़ जा तो एक नर्स रख दी साहब सेवा में, नर्स रख दी, तुम्हारे लिए नर्स रखी थी क्या बचपन में, कैसे पड़े हो तुम, उसकी सेवा नहीं कर सकते, रुपया लगा देंगे साहब नौकर रख देंगे, उनमें नौकरों से सेवा होती है, नौकरों से काम धंधा होता है, चाहते हो कल्याण उसे कैसे हो जाएगा, जहां आप रहते हो वहां ठीक तरह से रहो, अच्छी तरह से पालन करो तो परमात्मा तत्व की प्राप्ति हो जाए। परमात्मा दूर नहीं है, दूर तो तुम्हारा ये संसार है जो वो साथ में कभी आपके रहता नहीं, शरीर भी आपके साथ रहता नहीं है, जा रहा है, राम नाम सत बोल जाएगी और सब कुटुंब का कुटुंब आपके विषयों में जो हो जाएगा, फिर आपकी तो लगा लोभ हाय रुपया टका धर्म टका कर्म टका ही परम पदम ये सिगे है टका नासी हा टका टक टका आए थे बस पैसा मिल जाए तो इसके पीछे पड़े पैसा कमाओ अच्छी बात है रखो, परंतु पाप मत करो, अन्याय मत करो। और मुख्य बात है कि पैसों को केवल महत्व देते हो, पैसा बड़ी भारी चीज है, पैसा नहीं है, पैसे का उपयोग बड़ी चीज है, विद्या का उपयोग बड़ी चीज है, सब चीजों का उपयोग अच्छा किया जाए, सदुपयोग तो कल्याण कर देगा, जो आपके पास जैसी परिस्थिति है उसी परिस्थिति का अपने स्वार्थ अभिमान भोग न चाह करके केवल दूसरों के हित में लग जाओ, ते प्राप्नुवन्ति माम एव सर्वभूत हिते रताः, प्राणी मात्र का हित कैसे हो, कल्याण कैसे हो, उद्धार कैसे हो, लोक और परलोक दूसरों का कैसे सुधरे, ये आपका भाव हो जाए तो आपकी मुक्ति में कोई फर्क नहीं। वो गीता तत्व बता रही है, गीता वो तत्व बता रही है कि भाई अपने स्वयं स्वयं कर्मण्य अभिजाता संसिद्धि लभते नर यथा प्रवृत्ति भूतानाम ये न सर्वं विदंततम, जिससे संसार पैदा हुआ और जो संसार में सब जगह परिपूर्ण व्याप्त है, स्वकर्मणा तम अभ्यर्थ्य सिद्धि विंदति मानव, अपने कर्मों के द्वारा उसका पूजन करके मनुष्य सिद्धि को प्राप्त कर लेता है। तो सज्जनों जहाँ आप हैं वहाँ ही ऐसा क्षेत्र बनाओ कि आपके द्वारा सबका हित हो, सबका कल्याण हो, सब भगवान के भक्त बन जाए, सबकी सेवा बन जाए, तन से मन से वचन से धन से विद्या से बुद्धि से योग्यता से अधिकार से जो आपको पद मिला उनसे भी दुनिया का हित कैसे हो, केवल ये महाराज बदल दो भाव, नहीं तो मेरे को कैसे मिले, मेरे को कैसे मिले, आपको तो कुछ मिलना नहीं है, जन्म मरण आपका छूटेगा नहीं, उसमें बस रह जाएगा तो मिलेगा जन्म मरण महान दंड, ये मिलेगी नहीं चीजें, ये तो रह जाएगी वैसे लालसा रह जाएगी, वो देगी नरक। इस वास्ते इसको उल्ट दो कि सबका कल्याण कैसे हो, सबका हित कैसे हो, सबकी सेवा कैसे हो, तो निहाल हो जाओगे। ये भगवद गीता कह रही है, केवल अपने कर्तव्य के द्वारा सेवा करो और पैसों का इतना महत्व मत दो। हृदय से ये भी चीज अपने सदुपयोग में लगाना है, प्रभु ने दिया है तो अच्छे काम में लगाओ, उत्तम से उत्तम काम में लगाओ। उत्तम काम में लगाना कोई बड़ी भारी चीज नहीं है, पैसा रख करके उत्तम काम में नहीं लगाता वो दंड का भागी होता है। ऐसे कर देने से, आपका इनकम टैक्स देने से कल्याण नहीं हो जाएगा, नहीं दो तो डंडा पड़ेगा डंडा। ऐसे पैसे पास में रख करके शुभ काम नहीं करते हो तो दंड होगा, सस्ते रो दंड मर रही। नारद जी महाराज ने कहा युधिष्ठिर से भागवत में, यावत ब्रियेत जठरम, जितने में से आपका पेट भर जाए, जितने से कपड़े से निर्वाह हो जाए, जितनी जगह से निर्वाह जी सको आप, उतनी तो है आपकी, उसके सिवाय आपके पास पड़ी है उसमें भी अभिमान करता है तो मेरा धन है, वो चोर है चोर, उसका है नहीं। वो सस्ते ना और दंड मरती उसके बंदा पड़ना चाहिए। नारद जी महाराज ने कहा इस वास्ते सज्जनों, आपके पास भगवान ने दिया है तो अच्छे से अच्छे काम में लगाओ, मेहनत करके ले जाओ। कहते हम लगा दें विद्या दे दें, स्वयं जाओ जहां पर आकर आप तो, अरे स्वयं देखो और अपने हाथ से पैसा लगाओ। लोगों ने पैसा बड़ा माने तो हम पैसा दे देंगे, पैसा देने क्या हो जाएगा, महत्व पैसों का नहीं है सज्जनों, भाव का है। अरे वो मनुष्य हजारों लाखों रुपया दे दे वो पुण्य नहीं होता, जितने 150 रुपये पास में वो स्वयं जाकर के सेवा करे दीन दुखियों की, गरीबों की, गायों की, तो उसको बड़ा भारी पुण्य होगा। मनुष्य के शरीर का मूल्य नहीं है, कीमत नहीं है, अनंत अपार है, पैसा तो गिनती का होता है, इससे क्या हो जाए। अच्छा है नहीं करते उसकी अपेक्षा, दान पुण्य करने वाले बहुत उनसे वजह श्रेष्ठ, पर टैक्स खा जाते हैं लेते नहीं, उसकी अपेक्षा टैक्स देने वाले अच्छे, तो रुपयों का टैक्स दे दिया करो उसी भी अच्छा है, नहीं टैक्स देने वाले की अपेक्षा। पर इतने में कोई फूल जाओगे हम तो बड़ा भारी काम कर गए, बड़ा भारी तो भगवान के अर्पण हो जाओ, सब भगवान का समझो, अपना कुछ भी न समझो, फिर मोह से फिर आनंद, चाहे कितना ही रुपया और कितना ही कुटुंब और कैसे ही सही हो। नारायण 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 हरे गोपाल हरे।
Yeah. भाई बहनों से निवेदन
छोटे छोटे पहले कुछ जो छोटा छोटे छोटे
एक प्रश्न आया है कि जिसके संतान हो न हो वो गोद ले कि नहीं। भाई आपका समाज आपका मन मेरे से पूछते हो तो नहीं लेना चाहिए, भगवान को देना होता तो हमारे को दे देते, नहीं दिया तो हमारे जरूरत नहीं है। आपके पास पैसे हैं तो समाज के गरीब घरों के लड़के हैं उनको पढ़ाओ, उनको तैयार करो, वे बेटा ही है अपना सब। इस बात गोद लेना बढ़िया चीज नहीं है। गोद लेने कई आफत आती है इन तरह की, तो अभी समय नहीं इतना छुट छुटा देंगे।
मासिक धर्म में
हाँ, जो बहनों माता है मासिक धर्म में हो जाए तो उस समय बहुत परहेज रखना चाहिए, उसके शरीर से भी गंदगी निकलती है। इस वास्ते रसोई है पानी है आदि दिन में नहीं छूना चाहिए, अलग रहना चाहिए। शास्त्रों से तो ऐसी ऐसी बातें मिलती है कि एकांत रहे, कपड़ा अपना अलग हो, लोटा अलग हो, पानी ऊपर से दे दे, अन्न भी ऊपर से दे दे, एकांत में रहे और किसी को देखे नहीं बोले नहीं, इतने परहेज रखे। और फिर स्नान करने के बाद में देखे तो अपने पतिदेव का मुख देखे और का नहीं, नहीं हो पतिदेव तो अपना दर्पण में अपना मुख देख ले। एकदम बहुत रहस्य भरा हुआ है, बहुत सी बातें हैं, अभी अब कैसे कहे, छोटी छोटी बात है, उनको छूना नहीं चाहिए। रामायण गीता आदि है पुस्तक आपके नियम हो तो सुन लेना बढ़िया है, बढ़िया है। वो छूने में भी कोई पाप नहीं है, परंतु सुन लेना बहुत ही बढ़िया है। कोई सुना दे, लड़का लड़की देवर आदि कोई भी सुना दे, सुन। हाँ, दूसरी बात है कि भक्ति करते हैं तो हमारे घाटा नफा सब कुछ होता है, सुख दुख सब आता है, संयोग वियोग होता है। तो लोग कहते हैं कि तुम भजन करते हो, एक तो कहते हैं तुम्हारे घाटा क्यों लगा, राम जी ने क्यों किया, ऐसा क्यों कर दिया। इतना भोलापन की बात है, बिल्कुल बच्चों की तरह। भगवत भक्ति का मतलब धन आवे ये नहीं है, तो धन चला जाए ये भी नहीं है। इसका तो जीव का कल्याण है, उद्धार है। ये संसार इधर है उधर परमात्मा है, परमात्मा की कीमत समझने पर संसार की कीमत नहीं रहती और संसार की कीमत समझने पर भगवान की कीमत समझ में आती नहीं, आती नहीं। सुन लो, कह लो, समझ लो, पढ़ लो, परंतु जब तक संसार का आदर विशेषता से है तब तक भगवान का महत्व समझ में नहीं आता। ये तो बच्चों से कहावत है।
एक कहते हैं मेरे गुरु जी का शरीर शांत हो गया है, उन्होंने मुझे शिवम मंत्र दिया था, मेरा कृष्ण में और
कहते हैं कि अपने गुरु जी महाराज का शरीर शांत हो गया, उन्होंने मंत्र दिया था शिवोहम, और हमारा मन है कृष्ण भगवान की तरफ, तो शिवोहम की एक माला फेर लो, गुरु जी के कहने मात्र से और कोई जरूरत नहीं है। और श्री कृष्ण शरणम मम कर भगवान के भजन हो जाओ, भजन में लग जाओ, कृष्ण के शरण हो जाओ, चलते फिरते भी श्री कृष्ण शरणम मम कह सकते हैं भीतर से, नहीं कृष्ण 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 ऐसे गुरु भगवान का नाम लो, वो उपासना जल्दी सिद्ध करती है। ऐसे गुरु बहुत कम हैं जो शिष्य का ही केवल हित चाहते हो, अपने अपने संप्रदाय में दीक्षित करके अपनी टोली बनाने वाले गुरु ज्यादा मिलते हैं। उस वास्ते साधुओं में बड़ी खलबली मचती है, बड़ी भयंकर दशा हो रही है। सच्चे हृदय से जिसका मन जिस तरफ है उसी तरफ लगाओ, अगर तत्व बताने में वो फर्क नहीं, एक ही तत्व है, इसलिए तो ज्ञान कराओ और नाम और रूप जैसा उनके जैसे वैसा ही करो। ये मैंने पहले कहीं फिर कहता हूं कि भूख एक होती है और तृप्ति भी एक होती है, परंतु भोजन की रुचि एक नहीं होती। ऐसे ही जब तक परमात्म तत्व की प्राप्ति नहीं तब तक अभाव और दुख एक होता है और सुख और आनंद वो एक होता है, परंतु उपासना की रुचि एक नहीं होती। इस बात को वास्तव में वैदिक संप्रदाय ने विशेषता से जाना है, दूसरी हरेक संप्रदाय इतना नहीं जानती। इस वास्ते इनमें अनेक तरह के फिरके हैं, ऋषियों के अलग अलग वचन है, अलग अलग बातें हैं, तो ये क्यों है? ये प्रकृति भेद होने के कारण से है। अब ये भी विषय लंबा है। संसार में पांच धर्म है, विशेष करके ऐसे कई है, परंतु एक ये भारतवर्ष, ये जो वैदिक धर्म, हिंदुओं का धर्म, एक मुसलमानों का धर्म, एक ईसाइयों का धर्म, ये तीन बहुत बड़े हैं। पारसी और यहूदी बहुत थोड़े हैं। तीन धर्म विशेषता से है जो करोड़ों की संख्या में प्राणी है। उनमें आप विचार कर गहरा देखेंगे तो हिंदू धर्म में आरंभ में चलाने वाला मनुष्य नहीं मिलेगा। हिंदू धर्म के अंतर्गत संप्रदाय है, उनमें आचार्य मिलेगा एक एक, पर हिंदू धर्म का चलाने वाला भगवान भी स्वयं परित्राणाय साधु नाम विनाशाय दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय, उत्पत्ति अर्थ नहीं कहा, स्थापना के लिए मैं यूं प्रकट होता हूं, तो वो भी धर्म प्रकट करने वाला नहीं है, इस उत्पन्न करने वाला नहीं है, प्रकट करने वाला होता है। एक खोज होती है और एक उत्पत्ति होती है। खोज होती है वो तत्व पहले से होता है, और उत्पत्ति होती है वो पहले नहीं होकर फिर उत्पन्न हुआ होता है। तो एक मनुष्य के बुद्धि से जो संप्रदाय चलेगा वो उत्पन्न हुआ होगा, और ये खोज होगी, अन्वेषण, जो वास्तविक तत्व है उसकी खोज की ऋषि मुनियों ने, वो जिनको जितना जितना मालूम हुआ उतना कहा। ऋषियों मंत्र दृष्टार, ऋषि वे हुए जो मंत्रों को देखते थे, वैदिक मंत्रों का क्या तात्पर्य उनको देखते थे। अजाम एकाम शुक्ल लोहित शुक्ल कृष्णाम, ये ध्यान योग अनुगतान परिस्थिति में ध्यान योग से उस तत्व को देखा है और देख करके फिर कहा है। तो जिसका जितना जितना अनुभव कहा है वो अपनी संप्रदाय ऐसे विशेष नहीं चलाई है, अपनी बात कही। इस तरह से लाभ होता है उन महापुरुषों ने संप्रदाय कही, तो वो भी उन जीवों के कल्याण के लिए है, और भाई हमने ये करके देखा है तुम्हारे कल्याण को, तुम देखो। उद्धार की तरफ ही लक्ष्य है, टोली बनाने की तरफ लक्ष्य ऋषि मुनियों का, महात्माओं का, आचार्यों का नहीं हुआ। आज टोली बनाने के लिए चलते हैं, उनमें जीव का कल्याण नहीं है, हित नहीं है। हमारी टोली अधिक बन जाए तो हमारे को वोट मिल जाए, तो हमारे राज्य मिल जाए, कुछ नहीं है, धोखा है, धोखा है, धोखा। जीव का कल्याण कैसे हो? अब उसमें हम कौन सी बात को समझे? क्या था प्रश्न? उसमें क्या था? हाँ, तो इस वास्ते वो मंत्र देते हैं तो अपने संप्रदाय का देते हैं। यूं नहीं कि इसकी रुचि कैसी है, रुचि, योग्यता और विश्वास, ये तीन चीज जिसकी होती है उस उपासना में उसकी सिद्धि जल्दी होगी। रुचि हो और विश्वास हो और योग्यता हो उस धर्म के पालन करने के अपने अधिकारिता हो, बहुत जल्दी सिद्धि होती है आध्यात्म में। इसमें अगर उधर होने से वर्षों तक भटकते रहते हैं और श्रद्धा हो, फिर श्रद्धा घट जाती है, इतना जब कर देगा कुछ नहीं, इसमें कुछ नहीं, यूं करके नास्तिक हो जाते हैं। तो बात क्या है कि उनके अनुकूल चीज नहीं मिली, मन और बुद्धि विश्वास के अनुसार इस बात से नहीं मिली, तो अपने तो भगवान में मन लगे, उस आप उस भगवान के नाम का लो, नाम का उच्चारण करो, उसी के स्वरूप का ध्यान करो। ये बढ़ जाए राम राम राम। एक बात मेरे पास आई थी, उस बात पर कुछ कहता हूं। बहनों माताओं में विशेषता रहती है, उस बात के सुधार की आवश्यकता ज्यादा है, और भाइयों के भी रहती, उनका भी सुधार करना है। आपस में पक्षपात और विषमता, तो अपने घर के जितने हैं, सास ससुर देवर जेठ ननद जेठानी और देरानी, इतने घर में इतने ही प्राणी होते हैं। सर देवरानी एक दो होगी, एक दो जेठानी होगी, एक आप होगी, एक सास होगी, एक नंद होगी। अब सास की जगह काकी सासू भी हुए, बड़ी सासू भी हुए, कई सासू हुए, देवरानी कई हुए, जेठानी कई हुए, नंदा भी कई हुए, परंतु यह विभाग इतना ही है। इस विभाग में विषमता न रखे, रसोई देना, भोजन देना, भोजन परोसना आदि में समता रखे, थोड़ा थोड़ी में विषमता। अब हम आशा रखें घर वालों के सबके साथ समता करो, अपने पैदा हुए हुए एक दूध से एक गोदी में पले हुए छोरा छोरी में विषमता, तो ये बड़ी भयंकर है विषमता, विष है। समता है वो अमृत है। बहनों माताओं को चाहिए अपने छोटे बड़े आदि लड़कों के साथ विषमता न करे, समभाव से उनको देखे। सज्जनों सम परमात्मा का साक्षात स्वरूप है, इहैव तैर्जितस्तर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः। जिन पुरुषों का, बहनों का, भाइयों का मन साम्यावस्था में स्थित हो गया तो वे संसार को जीत गए, संसार मात्र के ऊपर विजयी हो गए। क्यों? कि निर्दोषं ये समं ब्रह्म, ब्रह्म परमात्मा निर्दोष और सम है, और जिसका मन निर्दोष और सम हो गया तस्मात ब्रह्मणि के स्थिता, वो परमात्मा में स्थित है, उसकी स्थिति संसार में नहीं। निर्द्वंदो ही महाबाहो सुखम बंधात प्रमुच्यते, द्वंदे विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन चमूढ़ा पद्मव्ययम तक, तो द्वंद रहित उस पद को प्राप्त होता है। इस वास्ते गृहस्थाश्रम में रहते हुए अपने मन में विषमता मत रखो, पक्षपात मत करो। माताओं से कहना है कि आप विषमता मत करो, पक्षपात मत करो। पक्षपात से कितनी कितनी हानियां हुई है ऐसी मैंने कई कथाएं सुनी है, कईयों के आचरण सुने हैं, घरों की बातें सुनी है, उसे बड़ा भारी नुकसान हुआ है, होता है। इस वास्ते आप ऐसा न रखें। अब मेरे को बहुत कहानियां याद है, बीती हुई घटनाएं याद है, एक नमूना सुनाऊं फिर आज और आज तो और भी कह दूंगा भाई, बातें तो कई है मेरे मन में। ऋषिकेश सुरगाश्रम में सत्संग हो रहा था तो उसमें श्री गोविंद का जी ने एक कथा सुनाई कि दो भाई थे, वेश्य भाई दो, और आपस में बड़ा प्रेम और मिलकर के व्यापार करते थे। एक एक बच्चा दोनों की हो गया, थोड़े थोड़े बड़े हो गए, लड़के खेलने लग गए। ऐसी हालत में बड़े भाई जी बाजार में गए तो उस दिन आम आए थे, आम फल नए, तो नया फल आया तो विचार किया भाई कम से कम दो आम खरीद ले बच्चों को दे दें, तो दो आम खरीद कर भी लाए। वो लड़के गेंद वो उधर फेंकर वो उधर फेंके खेल रहे थे, दरवाजे में जो ही आया तो स्वयं की दृष्टि पड़ी, पिताजी आए ताऊ जी आए कहकर दौड़े, ये आम है हाथ में तो बच्चों देखा फल कहेंगे। ऐसा देखा छोटा भाई उधर स्नान घर में स्नान कर रहा था, वो देख रहा था, उसको बड़े भाई से नहीं देखा, छोटा भाई देख रहा था। तो छोरे दोनों तरफ आए तो उसने ऐसे हाथ करके आम दे दिए, ऐसे देकर ऊपर चले गए। उसने देखा ये क्या तंत्र है भाई, भाई जी ने ऐसा क्यों किया। तो छोरे दोनों ही कूदने लगे, फल मिल गया मौज से। अब वो आगे पूछा छोरा ब्या कैसा तेरा आम है, वो ही देखा और वो भी देखा, तो अपने छोरे के हाथ में आम था उसके थोड़ी सी टक्कर लगी हुई थी, और उसके लड़के के हाथ में जिनमें रसाफ आम था वो आम के तो छोटी सी टक्कर थी उसमें लगी बड़ी। मन में शाम को जब शांति से बैठे तो कह भाई जी अपने अलग अलग हो जावे। अरे भाई क्यों हो जावे अलग, ना तो स्त्रियों के कोई खटपट ना भाइयों के खटपट, बड़ा प्रेम आपस में द्विरण जिठाने के भी और भाई भाई के भी, फिर अलग होने की तुम बात कैसे चलाई, क्यों चलाई। कहते आप इस बात कह दे सच्ची बताओ भाई जी, सच्ची क्या बतावे, आप जो दे वो दोगे वही मैं ले लूंगा, पर अलग होने का मेरा मन का विचार है। ज्यादा पूछा कि बता तो सही क्या बात है, वो बताना नहीं चाहता था, पर बड़े भाई जी ने ज्यादा जोर लगाया तो कहा आज दो आम लागे आपने ऐसा हाथ क्यों किया। कहते भैया अकल निकल गई, जब मैं बैठा हूं बरोबर काम करता हूं कमाता हूं उसमें उस समय में भी मेरे और आपके बच्चे में, मेरे बच्चे में आपके बच्चे में विषमता है, फर्क है, अगर मेरा शरीर चला जाए तो मेरे स्त्री और बच्चों का आप पालन करोगे, किस बात पर विश्वास करो? और शरीरों का भरोसा नहीं, अलग अलग हो जाए तो जितना भी हो अपना काम चलाएंगे आप ही। कुछ अलग अलग हुए तो आधी तो रकम हो गई, व्यापार कम हो गया, एक माल लेने को जावे, एक दुकान चलावे तो एक आदमी कितना काम करे, दो आदमी कितना काम करे। हमने मारवाड़ी कहा सुनी, एक जिता तो कमती नहीं, दो जिता ज्यादा नहीं, दो तो घने से घना और एक कम से कम। तो ऐसी बात, ये विषमता रखने से। और मैंने सुनी है हनुमान प्रसाद जी पोद्दार से बीती हुई बात सुनी है, एक सेठ थे धनी, मुंबई में रहने वाले बताए, तो वो बड़े धनी थे, तो उनकी स्त्री मर गई, स्त्री मर गई तो वे मर गई, बेटा बुआ सब ठीक ढंग से, तो ऊपर चौका था, नीचे उतर करके दुकान थी, तो चौके में भोजन करने को गए, सेठ नीचे थोड़ा काम कर रहा था, तो गया तो वहां भोजन परोसा लिया, तो बहू बैठी थी चौके में, उसने कहा कि दही, तो कहने है ना कर दिया, तो ठीक है तो नहीं है कोई बात नहीं, भोजन करके आ गए नीचे, आगे नीचे वहां काम पड़ा, किसने रुपयों की जरूरत पड़ी तो शादी रहेगी छोरे के पास, वो गया जीमने के लिए, अब जीमने के लिए गया तो साग और साथ में दही की कचोरी बेटे जो है थाली में देखी, वो चाबी लेकर आ गए, मैंने तो विचार किया कि मेरे सामने तो नट गई कि दही है ही नहीं, अरे नहीं है तो ये कहां से आया, है तुम नहीं कैसे, ठीक है। थोड़े दिनों में जाना था इंदौर, उनका काम और था, इंदौर चले गए, वहां इंदौर चलकर विचार किया कि भाई माँ हो परोस सकती है अथवा स्त्री परोस सकती है, दूसरा कोई भोजन परोस नहीं सकता, तो उन्होंने दूसरा ब्याह किया, ब्याह करके और फिर आए तो तार दे दिया कि अमुक टाइम में मैं आ रहा हूं, वो लड़का है जो अब मोटर लेकर सामने पहुंचा, सामने पहुंचा उतरने लगे तो सेठ भी उतरे, रो नहीं स्त्री वो उतरी, वो उतरी बक्सा दुआ देखा, तो मैंने लड़के ने पूछा ये कौन है, दही का कचोरा, दही का कचोरा। वो समझा नहीं, मैं तो समझा नहीं कि साल आप फिर बताऊंगा तेरी माँ है, ठीक यार तो गांव बड़ा अच्छी बात है, माँ जी पढ़ा ले आया घर पर, फिर पूछा कि बात क्या है, तो वह बात सुनाई, मेरे मन में आई कि स्त्री भोजन करा सकती और माँ तो कहां से आ गई, ब्याह तो भी वही कर लिया। फिर उनके लड़का हुए, सब संपत्ति खो गई, घर में बहुत खटपटी हुई, हनुमान प्रसाद जी पोद्दार की कही हुई बात है, यहां की बीती हुई, तो ये भोजन में विषमता कर दे, चीजों में विषमता कर दे, हमारे साधुओं को देने लगेंगे तो मेरे को बढ़िया चीज दे दे, यहां नहीं करते ऐसा, मेरे साथ बर्ताव नहीं करते हैं यहां, क्यों मत समझ लेना कि भाई स्वामी जी के साथ ऐसा करते हैं, अभी नहीं करती है बहनों माताएं, परंतु ऐसी बर्ताव में कई जगह देख रहा हूं, एक बार पुरुष हो यूं तो पुरुष हो तो मेरे को बढ़िया पुरुष दे, क्यों घटिया रेत पुरुष देगी, ये महाराज बड़ा पुरुष है, इनवासा ने चौखी चीज देनी, तो चौखी चीज देने इसका अर्थ हुआ कि पेटू और चट्टू है ये, ये तो परीक्षा हुई आपकी, अरे चोखा समझते तो जिनको चोखा नहीं समझते उनको बढ़िया देते, अरे ये चोखा है तो इन्हें क्या ऐसी दे दो चाहे ऐसी दे दो, चोखा तो तब है, अरे बढ़िया बढ़िया माल खावा में बढ़िया है तो कुत्ता में ही है, गधा में भी है, सगा में चोखो तो करीब है, तो चोखा समझे विषमता करे, मैं समझा किसी के साथ नहीं करे, ये तो माताओं तो करती है, घर वालों के साथ ऐसा ऐसा करती है, तो माता है बड़ी, उनके उनसे मेरा कहना है कि अपने लड़कों के साथ पक्षपात न करें, बहुओं के साथ पक्षपात न करें, अपने सब बेटा सब अपनी बीबियां है, इस वास्ते प्यार करे, यद्यपि छोटा लड़का माँ को अच्छा लगता है, ठीक बात है छोटी अवस्था है, इस वास्ते छोटा बच्चा ज्यादा लगता है प्यारा, परंतु जब दया दिया ठीक हो गया, अब क्या बात है, अब तो समान रीति से सबके ऊपर कृपा रखे तो परिवार अच्छा रहेगा, विषमता से बहुत नुकसान होता है। तो ये कहानी कही थी एक दिन सेठ जी ने, वो आम वाली, वहां बगीचे से हम उठे स्नान करने गए तो एक मारवाड़ी सज्जन बोला कि मैंने तो आज एक शिक्षा ले ली। क्या? कि घर में हम दो भाई अलग अलग तो हो गए, पर घर में साग और चीज मंगानी होती तो मैं ही मंगा करके भाग कर दे देता, पैसों का विभाग कर लेते, ये इतना पैसा तेरे इतना उतने, कोई दूसरा बोलता ही नहीं था, मेरे ही हाथ में। तो मैं आलू लाता था तो बड़े बड़े दे अपने तरफ रख दिया, छोटे छोटे भाई की तरफ रख दिया। इस रूप में बात करता था, अब नहीं करूंगा कभी, अब बरोबर करूंगा। उस भाई ने जो सुनाई मेरे को ऋषिकेश की बात है, तो सुनने से कितना लाभ होता है, शिक्षा ले ली। अब बड़ा बड़ा आलू ले लो या छोटा छोटा ले लो, टुकड़ा करके साग बनाएंगे, छोटों का टुकड़ा क्या हो और हो जाएगा, बड़ों का कुछ और हो जाएगा। परंतु उसमें कुछ मन चलता है कि बढ़िया चीज मैं ले लूं, इनको मेरा है तो इनको बढ़िया दूं, घटिया उनको दे दूं, ये अंतःकरण का मैलापन है। परमात्म तत्व की प्राप्ति में बड़ी बाधा है, परमात्मा का स्वरूप सम है, आपकी छोटी छोटी चीज में पक्षपात। भाई लोग भी इसलिए पक्षपात कर जाते हैं अपने भाई बंधुओं में, अपने लड़का लड़की में, तो ये ठीक नहीं है। अपने है जिसमें सभी खाओ भाई, सभी लोग, पर नहीं है तो उससे ही काम चलाओ, ऐसी क्षमता रखना बहुत बढ़िया है। तो क्षमता के विषय में कई बातें हैं, उनके नुकसान बहुत होता है, कुटुंब में लड़ाई हो जाती है, प्रेम नहीं रहता। इस वास्ते प्रेम है वो अमृत है, घर में साथ साथ रहो तो प्रेम रहेगा, और जब मतभेद होने लगे, एक भाई दूसरी बात कहता है, दूसरा भाई दूसरी बात कहता है, मतभेद होता है, ऐसी में सजग हो जाना चाहिए और अलग अलग होकर अलग अलग घरों में रहना चाहिए। वो मतभेद पड़ते पड़ते इतना वो पड़ जाती बड़ी दरार, जिससे उनका मिलना मुश्किल हो जाता है। और एक बात बतावे, रविवार आदि के दिन अपने घर में कीर्तन रखो और कीर्तन करो, भगवान नाम का उपासना करो, और उस दिन सबको पूछो, आपस में कोई खटपट हो तो एक एक के पगा पड़ा करके वो खटपट मिटा दो, और दिन में हो जाए पता लगे तो शाम की वक्त में घर घर वाले इकट्ठे हो जाओ, बाहर का नहीं, ऐसे करके और आपस में प्रेम कर दो, तो वो बद्धमूल बैर नहीं होगा, नहीं तो बहुत बड़ा भय बैर हो जाएगा। इस वजह से वो खटपट रोज नहीं मिटा देनी चाहिए। रोजी नारी राड आपसरी अच्छी नहीं, बने जहां तक बाढ़ सतपद चीजें थकनिया, राड भी बाढ़ कर लेनी चाहिए। तो ये आप गृहस्थों के लिए बहुत बड़ी काम की चीज है। रविवार आदि के दिन कीर्तन करो, उस दिन ऐसी बात हो गए कि बस एक एक को नमस्कार करके सब कर ले साहब, और सुबह और शाम दोनों वक्त बड़ों के चरणों में प्रणाम करने का नियम रखे। बहनों माताएं हैं उनको चाहिए, जेठानी है, सास है, बड़ी नंद है, उनके चरण सुबह नमस्कार करे, ससुर है, जेठ आदि है उनको दूर से नमस्कार करे, पति को एकांत में शुक्र के नमस्कार करे, और भाइयों को चाहिए कि माँ के चरणों में मस्तक लगाकर नमस्कार करके परिक्रमा करके नमस्कार करे। और माता के समान जिनका दर्जा ऊंचा है, अवस्था छोटी है, तो जमीन पर अपना मस्तक रख करके बड़े आदर से प्रणाम करे। बहनों माताओं को चाहिए कि ब्राह्मण हो चाहे साधु हो, जहां तक मन छूना नहीं चाहिए, नमस्कार के लिए भी नहीं सुना चाहिए, पिता से भी बढ़कर आदर नहीं है समझकर नमस्कार करना चाहिए। तो उससे धर्म बढ़ता है और आपका तेज बढ़ेगा, तेज शक्ति बढ़ेगी आपकी, और ऐसे स्पर्शास्पर्शी करते रहोगे तो वो तेज नहीं बढ़ेगा। आज तो साथ में हाथ मिला करके नाचते हैं, पुरुष किसी का स्त्री किसी की, साथ में डांस आदि खेलते हैं, तो बड़ी पतन की बात है, ये मामूली बात नहीं। एक राजपूत लड़का था, उसका ब्याह किया तो राजपूतों में पर्दा ज्यादा है, वो पर्दे वाले थे, वो छोरा था आजकल का, उसने किया कि नहीं पर्दा उठाओ और मेरे साथ खेलो चलो, तो बड़ी मुश्किल से उसको खेलने में लगाया, और लगा कर फिर देगा तो वो डांस खेलने के लिए गए, वो खेलते तो उसमें तो सभी मिलते हैं आपस में, ऐसे ऐसे मिलते ऐसे ऐसे खेलते रहे। अब वह छोरी महाराज खेलने के पड़ गई स्वभाव की, अब वो पति को माने नहीं, सारे जाए चली जाए, फिर क्या तुम मत जाओ। वो रिश्ते रुके नहीं, सुबह पड़िया खराब। झालामन सागर विजय सिंह जी ने बीती हुई बात ये मेरे को बताई थी, थोड़ा रोता है, अब वो मानती नहीं। ये समझते हैं ठीक बनी का परिणाम क्या होगा, वो बड़ी मुश्किल होती। इस वास्ते बहनों, माताओं को, भाइयों को मर्यादा सहित रहना चाहिए। सुवास आदि है ये, आप तो क्या डॉक्टर मानो, डॉक्टर को आदर्श है आपके, वे एक का ऑपरेशन करके उबाले बिना दूसरे का भी ऑपरेशन नहीं करेंगे, नस्तरों को उबालेंगे। इस तरह से आपस में अलग रखो तो बड़ी अच्छी बात है। तो ऐसे मर्यादा रखो, घृणा नहीं, तिरस्कार नहीं, अपमान नहीं, परंतु शास्त्र की मर्यादा है मात्रा स्वस्था रुहित्रा न विभक्ता सनो भवे बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वान सोती जन सती। माँ हो, बहन हो, बेटी क्यों न हो, एकांत में जो तुम मत रहो। इंद्रियों का स्वभाव बड़ा बलवान है, विद्वान को भी फेंक लेता है, ऐसी बात है। इसमें भी एक व्यास जी की जयमिनी की कथा है, परंतु अभी नहीं कहता मैं। इतना काम अपने रखे तो बड़ा अच्छा है। फिर माने न माने आपकी बात, मर्जी है। मैंने बहुत सी बातें देखी है, संतों से, महात्माओं से सुनी है। आप भी माल बिक्री करते हो तो कहते अच्छे मिल का ऐसा अमुक जगह चीज है, तो हमारी भी बड़े अच्छे ठिकाने की चीज है जो मैंने किए है, सुनी है संतों से। वो बात आपको कहता हूँ, हमारा माल बहुत अच्छा, अब हम प्रशंसा करें तो बुरा ही लगेगा। तो आप भी माने डाकन कौन सा अच्छी अच्छी कह रही, भाई हमारे को अच्छी लगती, आपको अच्छी लगी पालन करो, न रह गए तो मर्जी आपकी है, उसमें आप स्वतंत्र हो। परंतु बातें बहुत सारी हैं, इस तरह से आपस में बर्ताव करो तो कितना काम बढ़ जा रहे हो। घर में रहने की विद्या मैंने बताई थी, फिर क्या देता हूँ, आपका जो संबंध है वो आपके लिए हुए नहीं है, उनके लिए आप हो, ये खास बात है। आपके लिए माँ नहीं, आप बेटा हो तो माँ के लिए हो, मानो माँ की सेवा तो आपको पूरी करनी चाहिए। माँ के पास गहना और रुपये है, उसे आपको दे, आपकी बहन को दे, आपके छोटे भाई बड़े भाई को दे, ऐतराज नहीं। माँ को कह देना चाहिए, माँ सेवा तो मेरे से लो और धन आदि दो तो तुम्हारी जहां मर्जी हो दो, दान पुण्य में लगा दो और जगह लगा दो, अपनी सम्मति तो अच्छी देनी माँ को। और माताओं को चाहिए कि दान पुण्य करना हो, धर्म करना हो, तो अपने पति से सलाह तो लेनी चाहिए, वो तो उतनी जरूरत नहीं है, पर पति न हो तो लड़का से। अरे सामर्थ्य है तो रुपया क्यों मांगते हो, रुपये मांगते हो, सामर्थ्य कहाँ है तुम्हारे, तो रुपया भी है गुलामी। ऐसे बहनों माताएं ऐसे ठगी में आ जाती है। इस वास्ते बड़े पुरुषों की सदा से काम करना चाहिए, उनमें अच्छा रहेगा। और दूसरे जगह जगह पीरों के चली गई, वहां पर छोरा ठीक नहीं है तो उसे गया, आशा दिखाया, वहां ये दिखाया, पाखंड होता है प्राय। बहनों माताओं, आप भगवान को याद रखो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, हनुमान जी का रखो, भूत महापीर जब नाम सुमाने भूत के साथ निकट नहीं आए, ये नए ही नहीं आ सकते। ऐसे भगवान की उपासना करो, सुंदरकांड की उपासना करो, बड़ी अच्छी बात है। इस तरह से घरों में रहते हुए सात्विक जीवन बिताओ। सज्जनों, समता परमात्मा का स्वरूप, अरे वो प्राप्त होती है त्याग, शांति, त्याग से। त्याग का अर्थ ये नहीं कि साधु बाबा बन जाओ, बड़े अपने स्वार्थकार आराम का त्याग, स्वार्थ बुद्धिकार आराम बुद्धि का त्याग, आराम बुद्धि के त्यागने से अहंता मिटती है और स्वार्थ त्यागने से ममता मिटती है और निर्ममो निरहंकार से शांति मिटी है, परमात्मा की प्राप्ति हो जाती है। इस बात से क्या त्याग कर दूसरों का हित कैसे हो, सबका हित कैसे हो। पर हित बस जिनके मन माही तिनका जग दुर्लभ कर सुनाही। राम जी ने गिरिराज को गति दी तो क्या कहा वहां पर भाई, परहित बस जिनके जिनके हृदय में परहित है तो उसी के लिए कुछ भी दुर्लभ नहीं है। तात कर्म निजते गति पाई, मैंने तुम्हारे वो चतुर्भुज रूप देकर भेजा है, ये मैंने नहीं, तात कर्म निजते गति, अपने कर्म से तुमने सदगति पाई है। क्योंकि परहित के लिए सीता जी के लिए पांच कटवा ली मर जाए बचा दो, कितना उसका काम है, कितनी उदारता है। सीता को पुत्री कहकर बोला है, गिरिराज बेटी कहता है। अरे महाराज सीता जी पिता के समान ही पूजनीय आदरणीय समझती, कितनी विलक्षण बात। वो दशरथ जी का मित्र था, रघुकुल नार पहचानी उसकी स्त्री, ऐसा समझ करके और वो रक्षा करी। तो भगवान ने भी कह दिया भैया सात कर्म निज थे गति पाई, तो दूसरों का हित करना है ये बढ़िया बात है। बैरी करे बैर करे तो उसके साथ भी हित करना, अपनी तरफ से तो बेहित करना ही नहीं। निस्तीर तो मधुर मुदमग्धा ऊख होता है तो उसको फेरा जाए तो मीठा ही मीठा निकलता है, ये नहीं कि तंग करता है इसीलिए कड़वा दे दे, कड़वा है ही नहीं, मीठा ही निकलता है। ऐसे सज्जन पुरुष होते हैं उनको दुख देने पर भी वो कष्ट नहीं देते, वो किसी का बुरा नहीं चाहते, दुख को उसका देना नहीं मानते, अपने कर्म का फल मानते हैं। और कर्म का फल भी नहीं है, दुख का कारण सज्जनों सुख की इच्छा है, ध्यान देना। अपने सुख दुख आता भी कर्मों का फल भोगते हैं, कर्मों का फल तो परिस्थिति है, सुखदाई दुखदाई परिस्थिति सामने आ जाती है, बस इतने में कर्म तो खत्म हो जाते हैं। आप उसे सुखी हो सकते हो दुखी भी हो सकते हो। नारद जी महाराज कथा सुनी होगा, भागवत सुनते हो, उर्जन में कथा में दासी का पुत्र था और मेरी माता को एक संत चातुर्मास में रहे उनकी सेवा जल भरे आदि के रख दिया, तो मैं साथ साथ में जाता था, तो संतों की कथा होती हूँ मैं सुनता था मन लगा कर, खेल कूद छोड़कर कथा सुनता था। तो संतों के बड़े भाव हो गए उत्पन्न, खेल कूद छोड़कर के सत्संग सुनता, अपने भाई लोग आवश्यक काम को छोड़कर नहीं आते हैं सत्संग में, वो फालतू समय में आते हैं, पर वो खेल कूद छोड़ दिया। अद्भुत कीर्ण के अनुवर दी और कह जैसे ही करने लग गए तो संतों ने कृपा करी, चक्रु कृपा, यदि भी तुल्य दर्शन सब पर के समान दृष्टि रखने वालों ने भी उन पर कृपा की। नारद जी पर चले गए, बाद में इनका मन लग गया भगवान में। अब माँ के एक ही बेटा विधवा माँ थी, वो कहते बेटा भोजन कर ले, अब तू सो जा, ऐसे करे वो प्यार से, उनका लगे भगवान में मन तो बाधा लगती थी। एक दिन गाय दूहने के लिए गई, सांप काट गया, माँ मर गई, मार गई तो नाचने लगे। अब छोटे बच्चे की माँ मर जाए इससे बढ़कर दुख और क्या होता, पर तू नाचने लग गए, खुश हो गए। प्रारब्ध का काम था, माँ मर गई वियोग हो गया, परंतु दुख नहीं हो गया प्रचुर सुख हो गया। फिर जंगल में चले गए, वहां भजन किया, झरने का पानी पिया, विष्णु बैठे भगवान में खूब बड़ा मन लग गया। मन लगने बाद में फिर मन लगा नहीं, हुए व्याकुल लगे रोने। आकाशवाणी ने कहा कि तुम्हारे को अभी दुर्दो दुर्दर्शो हम कुयोगी नाम, ऐसे में दर्शन नहीं दे सकता, दूसरे जन्म में तुम ऐसे ब्रह्मा के पुत्र होंगे और उस भजन में दर्शन होगा। ऐसा कहा तो महाराज भजन कीर्तन करते हुए कहते ये देह कब छूटे, देह कब छूटे, कोई मरना नहीं चाहता, उन्हें चाहना हुई। तो ये विरुद्ध परिस्थिति घटती है, ये तो है प्रारब्ध का फल, और सुखी और दुखी होना ये है मूर्खता का फल। तो मूर्खता सत्संग से मिट जाती है, परिस्थिति नहीं मिटती। पहले आए तो परिस्थिति ऐसी क्यों आ गई तुम्हारे, तुम भजन करते हो तो भजन करने पर परिस्थिति तो पहले का रहती हुई वो आवेगी, परंतु भजन करने पर उसका असर नहीं होगा। सुखदायी परिस्थिति आने पर भी फूलेगा नहीं और दुखदायी आने पर झूलेगा नहीं, वो अपनी कहते हैं आने जाने हुए दिन और रात की तरह रात आ जाए तो फिर काम धंधा करो, अब रोने से क्या होगा, दिन हो गया अच्छी बात है देखने लग गया काम धंधा करो। इस तरह से सुख और दुख तो आते रहते हैं और मनुष्य को दीर्घ करके भगवान की तरफ चलना। सज्जनों ये सब बातें तब होगी जब मनुष्य शरीर का उद्देश्य परमात्मा की प्राप्ति है, ये आप समझोगे तब। धन ग्रह करना भोग भोगना ये तो असुरों का काम बताया है। कामोपभोग परमा एतावदित निश्चिता नान्यदस्ति इति बात ने और कुछ है ही नहीं, ऐसे केवल पिंड पोषण परायण होते हैं असुर कहलाते हैं राक्षस है वो, उनका ऐसा ध्यान होता है। मनुष्य है वो भोग गुणी नहीं है, सुख और दुख भोगने के लिए नहीं आया है, सुख और दुख से ऊंचा उठने के लिए आया है। और सुख और दुख दोनों साधन सामग्री है, इन दोनों में अगर बढ़िया है तो दुख बढ़िया है और सुख घटिया है। परमात्मा की प्राप्ति में चलने वालों के लिए दुख स्वतः संसार से उपरति करके परमात्मा की तरफ लगाता है और सुख परमात्मा से विमुख करके संसार की तरफ लगाता है। इस वजह से दुखदायी परिस्थिति अच्छी है, पर सावधान हुए तब वो सुख के लिए रोएगा तो दुखदायी परिस्थिति भी फायदेमंद नहीं होगी, असुविधाई भी नहीं होगी। सुख भोग में लगा है उसकी वृत्ति, सुख में तो सुख भोगेगा, दुख में सुख को याद करेगा और कैसा करे सुख हो जाए, और रोना है तो होगा नहीं तो नहीं होगा, तो रोता ही रहेगा सुख दुख सब में। परमात्मा की प्राप्ति करना होगा तो फिर जितना दुख आ गया आफत आ गई उतना अच्छा हुआ कि संसार से ऊंचे उठ गए। आजकल ये कहते हैं कि छोरा मानते नहीं, छोरी मानते नहीं, बिनिया नहीं मानते, हमारे कहना नहीं मानते, ऐसे है तो तुम बड़े बड़भागी हो। ये पहले भी मैंने कहा था, फिर कहता हूँ, याद दिला देता हूँ, इस बात को याद रखो कि ज्यादा अनुकूल परिवार मिलता है तो उससे आदमी बनता है और प्रतिकूल मिलता है तो बंधन टूटता है, मोह नहीं रहता, वैसा वो ठीक रहता है। ऐसी बड़ी वैज्ञानिक बात है, गहरी बात है, परंतु बहुत लाभदायक है। सुख में लोग ज्यादा चाहते हैं सुख चाहिए, तो सुख चाहिए फंसने के लिए, सुख चाहिए परमात्मा की प्राप्ति के लिए नहीं। सुखदायी आपके पास सामग्री है तो दूसरों के लिए दूसरों को दो, और दुखदायी सामग्री है तो उस सुख की इच्छा का त्याग करो, सुख नहीं चाहिए। और सुख की इच्छा का त्याग करने से ही सुख सामग्री का दूसरों के लिए उपयोग होगा, और दुख होने पर भी सुख की इच्छा छोड़ने से दुखदायी शांति हो जाएगी। जब आप इस तत्व को समझ जाओ अथवा इसको मान लो कि भाई अपनी इच्छा नहीं भगवान की इच्छा में हाँ मिलाना है, भगवान कहे जैसे ही सही, तो वो भक्त हो जाएगा भगवान का। तो सज्जनों क्या बतावें, आपके अनुकूल रहने वाला नौकर होता है और रात दिन सेवा करता है तो उस नौकर के बस में आपको होना पड़ेगा। ऐसे भगवान भी बस नहीं सकते, असली भक्त के बस में होते आए भगवान, भगत के बस में होना पड़ेगा। जो अनुकूल आपके ज्यादा चलता है वो आपको कैद करता है, आपको गुलाम बनाता है, और आपके अनुकूल नहीं प्रतिकूल चलता है वो आपको ऊंचा उठा रहा है, मोह से दूर कर परमात्मा की तरफ लगाने वाला हो रहा है। तो अनुकूल परिस्थिति आ जाए तो वो दूसरों को दो, अपने तो खावे जितना, तो अन्य पैरों जितना कपड़ा और रहो जितनी आपकी जगह, अधिक अधिक आपके पास में वो दूसरों का है, किसका है इसका पता नहीं, अभावग्रस्त आवे उसको उसी का समझ दे दो, मेरे को पुण्य होगा ये नहीं। भाई क्यों नहीं कि पुण्य होगा तो अर्थ ये हुआ कि फिर जन्म लेना है आपको, और जन्म लेना है तो मुझे पुण्य भोगोगे तो कहाँ भोगोगे, भगवान के अर्पण करो। दातव्य दीयत दानम दीयत उपकारिणे, उपकार करना हमारा काम है, ऐसे करो सुखदायी सामग्री वो भी उद्धार करने वाली, और दुखदायी आ जाए सामग्री सामने तो सुख की इच्छा का त्याग कर दो, हमें जरूरत नहीं। एक संत ने एक संत की बात सुनाई कि महाराज आप क्या करते हो, पास में कुछ रखते नहीं, भूख लगे तब कहते भिक्षा को जाते, भिक्षा पा लेते मिलता जब, कहते भिक्षा न मिले तो कहते भूख को पा लेते, भूख को कैसे पा लेते हो, तो संतों की बात है, भूख को कैसे पालो कि आज भोजन नहीं करेंगे तो भिक्षा नहीं मिली तो भूख ही पाली, भोजन नहीं करेगा कल करेंगे तो हम तो भूख ही पा लेते, कैसी मौज की बात, आवेगी से मस्ती है, भोजन मिल जाए तो आनंद, न मिल जाए तो आनंद, सुख दुखे समय कृत्वा लाभा लाभ हो जया जयो तथो युद्धा नैवम पाप, ये पाप इसमें है रागी और नाराजी में, ऐसा न रखकर संसार में रहो। निर्णय पद्म पत्री वा कमल की पत्ते की तरह आप रहो। अब उसको कोई दुख दे सके, दुख के दरवाजे गलियां सब बंद हो गई, उसके पास दुख आ नहीं सकता, क्यों? दुख आई तो परमात्मा की कृपा से आया है दुख। ऐसे होकर मस्त हो जाए। एक राजा थे, राजा और मंत्री एक साथ बैठे थे, इसमें साग लेकर आ गया, बैंगन का साग, बैंगन आया बड़ा बढ़िया। तो मंत्री साहब ने कहा, सर राजा साहब देखो ये साग आया है। हाँ हाँ, रसोई का बुलाओ, बुलाओ रसोईया जी, ये साग बहुत बढ़िया है, देखो कैसा सुंदर फल, कैसा बढ़िया है। मंत्री बोलेगा, कैसा सुंदर है, ऊपर का पॉलिश देखो कैसा बढ़िया, और रंग एक ब्लू तेज, एक फीका ऐसा रंग, और ऊपर देखो मुकुट भरा हुआ, ये तो बहुत ही बढ़िया चीज है। राजा साहब ने प्रशंसा कर दी, मंत्री साहब ने प्रशंसा कर दी, रसोईया ने बहुत बढ़िया साग बनाया। अब खाने बैठे तो एक दो फुल अधिक खा गए, अधिक खा गए तो अजीर्ण हो गया, अजीर्ण हो गए तो राजा कहने लगे कि मंत्री साहब बैंगन बड़ा खराब है। कि महाराज जी तो नाम ही बेगुण, इसमें गुण है ही नहीं, कोई काम की चीज नहीं है, बड़ी निकमी है। आपने देखा नहीं माथे के ऊपर कील दिया है इसने, देखा ना? अगर अच्छा होता तो कील सिर पर क्यों देते, ऐसा है। राजा हंसे, हंसे कैसे है कि कल तो मुकुट हो गया, आज कील हो गई, क्या बात है? अंदाता मैं बैंगन का नौकर नहीं हूं, मैं तो आपका नौकर हूं, आपको अच्छा के बहुत बढ़िया, ये घटिया बिल्कुल घटिया, बैंगन का नौकर तो नहीं हूं। ऐसे भगवान जो भेजे तो बहुत बढ़िया, महाराज आप तो भेजे, वाह 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 वाह, कृपा कर दी, सुख भेजे तो कृपा कर दी, तो वो तो है भगवान का नौकर, दूसरे है बैंगन के नौकर, ये बढ़िया किया करे। अपने तो भगवान भेजे वो ये बढ़िया, क्यों? तो भगवान ने भेजा, नामदेव जी घर में आग लग गई, नामदेव जो कहा तेरे घर में आग लग गई, दूर से दौड़े आए और कहते वाह अपने वाह बड़ी कृपा की, आज तो आपने बहुत कृपा करी, बढ़िया काम किया, बची हुई चीज भी भीतर रख दी। तो राजू नाचने लगे, लोगों ने कहते पागल क्या करता है, कहते तो भगवान के भोग लगाते हैं, भगवान है तो आग है ये, कि मेरे घर में बिने पूछे मेरा मालिक आ सकता है, मैं आ सकता हूँ, तीसरे की किसी की मजा लगे आ जाए, बिना पूछे आया, ठाकुर जी है ये पहचान है। जलाने लगे, अब जरा राजी हो गए, अब आप प्रसाद चढ़ाओ बताशा तो बताशा भोग लग जाए, तो वो प्रसाद मिल जाए, पेड़ा चढ़ो पेड़ों को प्रसाद मिल जाए। अब उसने घर लगा दिया तो नामदेव की छान छवाई, छप्पर छा दिया, क्यों छाप दिया कि सबका घर अर्पण कर दिया तो प्रसाद देगी नहीं ठाकुर जी, नहीं तो डाकन बेटा ले दे, अग्नि किसी को दिया करती है क्या, तो भगवान की अर्पण किया, मस्त हो गया। मन बाहर गए यात्रा में, इधर वृक्ष नीचे रोटी बनाई रख करके घी लाने को गए तो लोट रोटियां उठा के कुत्ता भागा, घी लेके भागे, महाराज महाराज आपके तो भोग लगाना है, अंधा था थोड़ी चौपड़ दू रूखी लेकर क्यों ले, ले, ले। यूं कर भागे, भगवान प्रकट हो गए, आज कुत्ता रोटी ले जाए तो लाठी लेकर पीछे भागे, अब लाठी लेकर कुत्ते को छुड़ा लो तो खावड़ी का तो आपने काम की नहीं रहेंगे, लेकिन उसको तो मेरे पे खाने दो, उसको खाने नहीं रहेंगे, गुस्सा आया हुआ है तो गुस्से में होश नहीं रहता, मैं क्या कर रहा हूं, ऐसे होश नहीं रहता। तो भगवान की मर्जी मानने वाले तो उसमें बड़ा मानते हैं, कुत्ते में भगवान प्रकट हो गए, भगवान तो सब में है ही, पहचानते नहीं, ऊपर की चोरी कोई देखते हैं, वे संत भीतर के देख रहे, भीतर भगवान है, हमारे प्रभु है, हमारे प्रभु, तो फिर तो व्यवहार ही कैसे चलेगा, हटे कोई डाकू आ जाएगा, चोरी आ जाएगा, ले जाएगा, लेकर ले जाएगा, ठाकुर जी तो भीतर है परंतु हम लीला करेंगे ठाकुर जी के साथ। अर्जुन और भीष्म का आज युद्ध हो रहा था तो भीष्म जी महाराज ने ऐसे बाण मारे जोर जोर से, कृष्ण भगवान के ही, भगवान घोड़े हांक रहे थे तो ऐसे बाण मारे छोटे छोटे जो घोड़ा भी लगाम पकड़ना मुश्किल हो गया, कवच टूट गया, लहूलुहान हो गए और अर्जुन के रथ को भरिया बाण बाणों से वो चला नहीं सका, बाण नहीं चला सका, शस्त्र इसे ऐसे खसक नहीं सका। भगवान कह रहे क्या करता है कि महाराज क्या करूं, बस नहीं चलता है, भीष्म जी ने ऐसा काम किया जो चलता नहीं मैं, भगवान फिर दौड़े, दो बार दौड़े, एक बार तो चक्र लेकर दौड़े और एक तबुक लेकर दौड़े और भीष्म जी पर
इसमें आई आई महाराज आई आई आज त्रिलोकी में मेरे पर सुयश हो गया, मेरे पर आप प्रहार करने के लिए आए हो, मारो गिरा दो मेरे रथ में, ऐसे स्तुति करने लगे। भगवान इष्ट देव थे भीष्म जी महाराज के और अर्जुन का आदर करते थे, परंतु क्षत्रिय बनकर के सामने आए हो तो बाणों से पूजा होगी, बाण रूपी फूल चढ़ाएंगे खूब अच्छी तरह से। भागवत की स्तुति में कहा है मेरे तीखे बाणों से लोहलुहान हो गए, कवच टूट गया है, चमड़ा फट गया है, ऐसे भगवान की मेरी गति हो गए। जैसे फूलों के श्रृंगार करके भगत ध्यान करता है, ऐसे भीष्म जी महाराज बाण मार करके भगवान का ध्यान करते हैं। स्वकर्मणा तम अभ्यर्थ्य, अपने कर्मों से भगवान का पूजन करते और भगवान खुश होते हैं उसे नाराज नहीं। तो ऐसे चोर डाकू आवे तो समझो भगवान आए हैं, मन पकड़ कैद में रखेंगे, क्योंकि ऐसे भगवान की पूजा ही ऐसे ही होगी, देवता हो जैसे फूल चढ़ेगा, जैसे देवता करे वैसे पूजन करेंगे, करे पूजन की बुद्धि से। परंतु ले जाए कैसे, धन कैसे ले जाए महाराज, हमारे को भगवान दिया है आपने, आप लेने आते हो। एक जगह हम दो साधु थे भिक्षा लाए, तो वो लेकर पा रहे तो मैं भी पा रहा था, तो उधर से आ गया बंदर, ये ऋषिकेश की बात है, तो वहां बंदर आ गया तो वो साधु बैठे थे, दूंगा नहीं मैं एक टुकड़ा नहीं दूंगा, मैं खाऊंगा तेरे को नहीं दूंगा, तेरे को लेना था तो भिक्षा अधिक क्यों नहीं दी, अधिक तो दी नहीं अब खाने को आया, दूंगा नहीं, पहली थोड़ी क्यों दी, तू ही तो है देने वाला, तू ही लेने वाला, नहीं दूंगा मैं खाऊंगा नहीं दूंगा, क्यों बैठे खाओ बताओ। अब उसकी बात है क्या लगे साहब, बंदर आओ चाहे कौआ हो कोई आओ, डैनी तो थोड़ी पस आएगी तुम बंदर बन के जा, मगर दो कैसे देंगे तुम्हारे, हमारे पेट भर जा दू है कैसे दे देंगे, कैसे दे देंगे, नहीं नहीं लाओ नहीं ऐसा हो जाए लड़ाई करे बस। एक संत रहते थे गया जी स्टेशन पर, वहां की बात सुनी है मैंने, वो एक सज्जन कहते थे अपने टाबरपन की बालकपन की बात, तो वो बड़े जो मैदान में रहते पिछा विछा लगे हुए ऐसे, तो वो कहते थे कि मैं बच्चा था तो उनके पत्थर मारूं और फिर मैं दौड़ जाऊं फिर पत्थर मारूं, तो महाराज वो शांति से कहने लगे, अरे लरी कैया की बान तेने ना छोड़ी कन्हैया, लरी कैया की बान तेने ना छोड़ी कन्हैया, लरी कैया की बान, ये छोरा पर तेरा गया नहीं कन्हैया, अभी तू छोरा ही है, अभी तो तरफ अलग ही है। अब वो पत्थर फेंकर बाबा गावे ऐसे बैठे, लरी कैया की बान तेने ना छोड़ी कन्हैया, ऐसे हुआ एक हालत में भगवान को देखता है वो पहचान लेते हैं महाराज, मौत के रूप में आ जाए तो पहचान ले, किसी रूप से आ जाओ किस रूप से आओ मैं पहचानता हूँ, तुम्हारे सिवाय है कौन, मुझे कोई है ही नहीं। एक बाबा जी जाते जाते खेत में पेशाब करने को बैठ गए, तो खेत का मालिक आया, मारी जोर से चोट की, क्योंकि मतीरा चुराता था कोई चोर, समझा यही चोर है मतीरा चुरा रहा है। मैंने जब फेरे एक बाबा जी है और क्योंकि महाराज बड़ी कसूरी क्या हुआ, तो मैंने समझा चोर है आपके लग गई मेरे को नहीं, तेने मेरे को नहीं मारा है, तेने तो चोर को मारा है, मेरे को तो मारा नहीं, तो अब महाराज क्या करूँ, तू कैसे राजी हो कि महाराज मैं गाड़ी में लेकर के आपको अस्पताल पहुंचा दे, अस्पताल पहुंचा दिया, वहां मलम पट्टी हुई, उसके बाद में एक सज्जन ने भेजा दूध, भाई महाराज को दूध भेज दो, तो वो दूध लेकर के हमारा दूध पी लो, तो तू बड़ा खलिया है बड़ा विचित्र है, पहले तो मारता है और फिर दूध पिलाता है, वो के बाबा जी मैंने नहीं मारा, तेने कैसे नहीं, तू नहीं था और दूध आवे कहाँ से, बता तू ही था मारने वाला, तू ही था, वो डरे बेचारे के बाबा जी फंसा देंगे हमारे, तो तू था मैं जानता हूँ, दूध आवे कहाँ से, तू बता दूध कहाँ से, बता दूध वो तो आवे तू ही है, कभी चोट मारता है कभी महाराज दूध पिलाता है, ये तेरी लीला है मैं जानता हूँ, लीला करता है ऐसी, अब उनको दुख कैसे होगा था, किसी हालत में जो भगवान को ही पहचानता है सब में, अरे सब में परमात्मा है, सर्वस्य चाहम जी सन्निविष्टा ईश्वर सर्वभूतानाम हृदय से उन्ति, तो मैं ऐसा नहीं कहता कि आप ऐसा आचरण करो, पर भाव नीचा मत रो, दोनों उदाहरण सुना दिया, बरोबर भाव भी वैसा, और भीष्म जी महाराज भगवान समझते थे साक्षात भगवान थे, पर मारते थे बाणों से, क्योंकि हमें तो अपने कर्मों से पूजन करना है ना, हम क्षत्रिय है और बने और युद्ध में तो ऐसी पूजा करेंगे, देवी की पूजा हो तो लाल पुष्प चाहिए, कपड़ा भी लाल नहीं दो, रोड़ी लगा दो, कपड़ा लाल चढ़ेगा, देवी की पूजा है। इस तरह से हम पूजा करेंगे तो जैसा देव वैसे ही पुष्प होगा, इस तरह से भगवान का पूजन करेंगे। तो हरेक भारत में भगवान का पूजन करें। सज्जनों, मनुष्य शरीर मिला है, परिस्थिति तरह तरह की ये आती है, ये सुख दुख भोग के लिए नहीं है। सुख दुख भोगने के लिए पशु पक्षी आदि है, मनुष्य भोगों से ऊंचा उठता है। तो सुखदायी परिस्थिति का भी उपयोग करना है, दुखदायी परिस्थिति का उपयोग करना है। दोनों के उपयोग में फर्क है, परंतु उपयोग करने वाले के उद्धार में फर्क नहीं है। सुखदायी परिस्थिति की अपेक्षा दुखदायी परिस्थिति बड़ी बढ़िया है जो परमात्मा की तरफ लगा ले। इस बात से भगवान दुखदायी परिस्थिति भेजा करते हैं तो संत लोग तो राजी होते हैं। बड़ा अच्छा किया महाराज, बड़ा सुंदर काम किया आपने, भगवान ईश्वरी महिमा गया करते। तो ये मनुष्य शरीर का फल है भाई, परमात्मा की प्राप्ति। तो विषमता न रख करके समता रखते हुए भगवान का भजन करो, कीर्तन करो। जाही बज राखे राम ताही बज रही है कि सीताराम 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 कहिए, कैसी रोग तो क्या होगा, परिस्थिति वैसी रहेगी, रोग और दुख पालो। कई सज्जन जा रहे तीर्थ यात्रा में, साथ में एक बाबा जी थे, तो तीर्थ यात्रा जाते जंगल में भटक गए, रास्ता भूल गए। अब सब लोग चिंता करें, अब क्या करें, सूर्य अस्त होने वाला है, रास्ता कौन बता रहे, जंगल में चिंता कर रहे थे। बाबा जी बड़ी मस्ती में चल रहे थे, लोगों ने कहा बाबा जी आपकी चिंता नहीं होती, तो चिंता हम क्यों करें भाई, रास्ता भूल गए, एक तो तकलीफ हो गई, अब रोको न उसको डबल क्यों करें, तुम डबल कर लो, चिंता करोगे एक रास्ता भूल गए चिंता करेंगे दुख करेंगे। हमारा तो सिंगल से काम चलता है, इस बात हम तो करेंगे नहीं, तुम्हारे करना तो कर दो भाई, चिंता से क्या होगा बताओ, मुफ्त में बैठना चिंता करे, हमें ऐसे हो गया ऐसा नहीं है, हे भगवान हमारे को ऐसा कर दे तो हम यूं करते, हमारे धन होता हम यूं कर दे। अरे होता भी क्यों करो, जो है जगह तो करो, जैसा है वो तो ठीक काम करो, अरे वो ठीक नहीं करते तो अधिक होने से कर लेते, आपका क्या विश्वास है, जैसी परिस्थिति आई उसी के अनुसार काम करो। तो भगवान ने परिस्थिति भेज दी, उसी के द्वारा भगवान का पूजन भजन करो, भगवान राजी हो जाएंगे। भगवान की अंगीती नहीं कि इतना रुपया खर्च करे तो भगवान राजी हो, तब तो ये धनी आदमी महाराज भगवान को ले जाते, हमारे देशों में तो दुर्दशा होती, उतना रुपया ही नहीं हमारे पास, वो कहाँ से खर्च करते, और भगवान रुपया नहीं दे, भगवान तो भावक गया इस नाथ भित्र का भाव दे देते हैं। ऐसी कई कथा है, पद्म पुराण में कथा आती है, एक राजा थे एक ब्राह्मण साहब ने चोल चोल राजा थे चोल, तो उससे पहले ब्राह्मण को दर्शन किए, उसके पास कुछ नहीं था। बात क्या हुई कि भगवान के वो सुंदर सुंदर गहना रत्नों का चढ़ा करके राजा गए, तो ब्राह्मण आए वो तो उतर फेंक दिए, पुष्प चढ़ा करके उसका घर पहरा दिया। राजा ने देखा तो जी कहते हमारे ऐसे ऐसे गहने थे, वो पुष्प भी चढ़ा हुआ अपना ब्राह्मण, राजा बड़े बड़े रत्न चढ़ा, तो कहा कि कौन भक्त तेज है, तो ब्राह्मण ने कहा कि भक्त कौन तेज, भगवान जाने हम अपनी पूजा करते हैं, रत्न चढ़ाता हूं मैं तो मेरी पूजा तेज है, तो भाई उसका न्याय तो भगवान करेंगे, अच्छी बात है दोनों बैठ के भजन करने को कि महाराज दर्शन दो, तो महाराज उस ब्राह्मण को दर्शन दे दिए पहले। तो राजा ने यज्ञ शुरू कर दिए, हजारों रुपया लगा था यज्ञ कुंड बड़ा करके हवन करने लगे, और वो बैठा और ब्राह्मण भजन करे, वो भोजन करना छोड़ दिया उसने, बड़ी कथा। तो उसका उद्धार भगवान सामने पहले आए और चलो तुम भगवान चले, उस तो राजा ऊपर होकर चले गए, जयराम जी की मैं तो जा रहा हूँ ठाकुर जी के साथ, उसको आया गुस्सा के, देखो मैं इतना ये करता हूँ अग्नि में कूद पड़ा, उसके लिए ही आ गया, अग्नि में नहीं कूदना हो कभी ऐसी आपघात नहीं करना, परंतु ये बात आई है ना, तो आप धन के मद में आकर धन के द्वारा पूजन करो भगवान को, भगवान निर्धन नहीं है जो धन देने से राजी हो जाए, भगवान कमजोर नहीं है किसी रीति से जिससे कि आप वश में कर लो, भगवान तो कमजोर होते हैं भक्त के सामने। एक रामायण में सुनता था तो एक सज्जन ने रामायण सुनाई, उसमें कहा कि भगवान कैसे पकड़े जाए, तो भगवान की मार्मिक चीज होती है, ये बड़े बड़े अफसर होते हैं उनसे काम कराना होता है तो उसी स्त्री को जाकर डाली देते हैं, समझे कि यहां नार दबेगी इससे हमारा काम ठीक हो जाएगा, अब सर तो स्त्री ज्यादा दबता ही है, और हर कोई जोड़े हाथ त्रिया से अनवी पीछो निमें त्रिलोक जी नाथ राधा आदर राजी उस बात बताइए। ऐसे भगवान की कमजोरी को पकड़ो, वो कमजोरी से लाभ उठाओ आप। क्योंकि भगवान की कमजोरी, हाँ बड़ी भारी कमजोरी भगवान की, अरे किस बात की है? तो मैंने सुनी भाई, सुनाई मैं कथा करो ना, सुनी उस बात, बात पक्की है। एक बाण करुणा निधान की, सो प्रिय जाके गति न आन की, शिवाय ठाकुर जी और किसी की हृदय में गर्ज नहीं है कोई कैसा ही ज्ञान हो। ऐसे अनन्य भक्त की भगवान के बड़ी गर्ज है। इस बात से अनन्य भक्ति के सौती के सामने भगवान नतमस्तक हो जाते भाई, अब क्या करे। इसने केवल ये दारागार पुत्रावतार विक्रम प्राण मम परम हित्वा मान शरण, केवल मेरे शरण है और किसी का सहारा नहीं लिया। तो ये भगवान की कमजोरी है, अनन्य भाव से उसी को ये इष्ट मानो तो ठाकुर जी बंध जाएंगे। अब ठाकुर जी जा नहीं सकते, खस नहीं सकते। अरे आप जगह जगह भटकोगे, उसमें ले क्या उसे ठाकुर जी निश्चिंत रहते भटकना दो उसे, जो क्या मिले। भगवान कहते हैं हमारे कोई देरी नहीं है, और जगह जितना काम हो तू कर ले, अरे कोई सही नहीं हो तो मेरे पास आ जाना, मैं वही हूं। अब सबसे काम अटके जा रहे केवल भगवान को, मैं तो प्यार हूं, मैं तो तेरे मंदिर निकाल ले भाई। तो मंदिर काटे सर जगह जगह भटके जगह जगह जाओ, एक भगवान को पूछो निहाल हो जाओ, लोग और कर लो सब सिद्ध हो जाए सब जन। नारायण 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 नारायण, तो बोलो कोई बात हो चंदा हो सो गए। अरे सुन लो भाई सुन लो बात, रात्रि में ज्यादा जगते हैं, खेल कूद करते हैं, प्रमाद करते हैं, वे निश्चर है निश्चर, विभीषण ने इनका आए निश्चर वंश जो सूरत राधा, मैं निश्चर वंश में हूं। अरे सुबह सोते रहे, जो ब्रह्म मुहूर्त है जिसमें भजन करना चाहिए वो 4 बजे से, तो वो 2-3 बजे सोते हैं और 4, 5, 6, 7, 9 बजे तब उठते हैं। ऐसी बात सुनी है, राम राम राम। मेरे तो मन में ऐसी आती है, कलकत्ता में रहा मैंने देखा लड़कों को, जवान जवान छोरे खड़ा होकर पिंपड़े में मुंह उतरा है। मैंने शिक्षा दी कि भाई क्या है धर्म क्या है अधर्म क्या है, तो अधर्म को जानना हो तो छोरे क्या करते हैं वो समझ लो, ये वही अधर्म उनकी परीक्षा। ऊंधा काम करेंगे ऊंधा, धर्म से विरुद्ध काम करेंगे। तो आजकल की शिक्षा और उनका जो आचरण है छोरा छोरियों का बड़ा विचित्र। तो रात्रि में छोरा सुबह उठे, उठ गए लाओ चाय लाओ सा, कपड़े पड़े हुए हैं, गीड़ आए हुए हैं, शुद्ध हो जाओ, निर्मल हो, कुमरा करो, शुद्ध हो जाओ, फिर भगवान का भजन करो, फिर कुछ खाओ भी, और भगवान का भजन कौन करेगा। उड़ते ही लाओ चाय, वो चाय पिए पीछे क्या करे, पीछे करे मुंह साफ करे, डिबिया में रहता वो काला काला हो, छोरा चला जाए तो वो उड़े जो छोरा मुला हो जाए काला। पहले माता बिलोड़ा करती थी, उनके पास छोरे जाते तो दही का लगता सुंदर गौर हो जाते, मक्खन लगता महाराज नींद पर अच्छा हो जाता छोरे। आ वो पुरुष का लगे छाता तो कालो मुंड ही है। तो ये आज की सभ्यता है भाई, कोटन से बूटन पतलू ने कंच, ये अपनी चीजें रहेगी। अरे भाई धोती धोती तो रखो कम से कम, लूंगी पहनने लग गए। राम 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 राम। तो ये परीक्षा है आज, समझे छोरे क्या करते हैं, क्या अधर्म धर्म होता है, वो देख लो आसन को देख लो सर, इससे पता लग जाएगा। राम 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 राम। इस बात से अपने शुद्ध बनो, निर्मल बनो। अब थोड़ा कीर्तन करो भगवान नाम का, सब पुस्तक में अपना गीता रामायण आदि तो अपने अशुद्ध अवस्था में वो पढ़े तो अलग रख दे, अशुद्ध भेजो बढ़िया करे। हमारे एक संत रहते थे पास दस, एक दिन हमने सुना है भाई दर्शन तो नहीं किया है, वो एक संत रखते थे और लंगोटी पहने हुए रहते थे, भिक्षा के लाए जावे कोई गांव में तो वो चद्दर पैर के करे और भिक्षा ला कर दे और चद्दर ऊपर रख दे बस एक चद्दर और लंगोटी के नहीं पड़े रहे। इस तरह से ही अशुद्ध अवस्था के लिए गीता रामायण अलग रख दे जो वैसे पाठ करो जप करो अपना अलग और शुद्ध होकर दीजिए गीता पढ़ो ऐसे अलग रहेगा। आसन भी अलग कंबल भी अलग लोटा भी अलग वो शुद्धि रखो इतना ही अंतर शुद्ध होगा। शौचा संग जुगुप्ता परे संसर्ग शौच संतोष तपस्ता अध्याय इस पढ़ना नियम है। ऐसी बात अपने क्या करें कि सीताराम ने भजन लाओ राम कृष्ण की जय रे मोगा
राम कृष्ण की जय रे
ओ मुख राम कृष्ण राम कृष्ण की जय रे मुख
राम कृष्ण की
जय सीता राम भजन लाओ जय रे सीता
राम
मुख राम कृष्ण राम कृष्ण की जय हे मुख
राम कृष्ण राम कृष्ण की जय
हे सीता राम भजन मुख राम कृष्ण राम कृष्ण की जय रे
मुख राम कृष्ण राम
कृष्ण की जय सीता राम भजन लाओ रे
सीता
राम मुख राम कृष्ण की जय रे मुख
राम
कृष्ण की जय रे सीता
राम
भजन लाओ रे राम कृष्ण राम कृष्ण
All right.